आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का तीन मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वह हमें इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के इन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफ़क़्क़ा वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निजाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम करे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों के खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के 22 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी के अहम सुतून हैं।
भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारेस यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमात के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की इस सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। نائب صدر نے کہا کہ سارناتھ امن، دانشمندی اور ہمدردی کی ایک لازوال علامت رہا ہے، جس سے بھارت کے روحانی اور فلسفیانہ دائمی ورثے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسے فہرست میں شامل کیا جانا ملک کی تہذیبی اور روحانی وراثت کا جشن ہے۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شکاوت نے اسے بھارتی ثقافتی وراثت کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ اڈیشہ کے پوتر شہر پوری کے گرینڈ روڈ پر بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا سونا بیشا یعنی سونے سے تیار ملبوسات کے ساتھ رتھ پر سوار دیکھے جا سکتے ہیں۔ روایتی خوبصورت زیورات آراستہ ان دیوی دیوتاؤں کے درشن کے لیے پورے ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا آج سونابیشا میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ رتھ پر سوار ہیں، جو خوبصورت تاج، ہار، بازوبند، بالیاں اور دیگر روایتی زیورات سے آراستہ ہیں، اور یہ تقریباً 208 کلو گرام سونے اور دیگر قیمتی جواہرات سے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ پوتر سنہرے لباس، جو سالانہ رتھ یاترا کی اہم ترین رسومات میں سے ایک ہے، عقیدت مندوں کے درشن کے لیے آدھی رات تک جاری رہے گا۔ پورا شہر عقیدت کے جذبے سے سرشار ہے۔ اس تقریب کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دیر الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر دو بسوں کے آج آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صحرائی شاہراہ پر شہریوں کی ایک بس اور داخلی امور کی وزارت کی ایک بس کے درمیان ٹکر میں تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے مدھیہ مہاراشٹر اور اڈیشہ میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ دو روز کے دوران چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 27 تاریخ تک انڈمان اور نکوبار جزائر، آندھر پردیش، گنگا کے ترائی والے مغرب بنگال، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائی کل میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں ہرارے میں تین میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا بڑا نشانہ دیا تھا، لیکن اس کی پوری ٹیم 18ویں اوور میں محض 129 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بلے باز آل راؤنڈر ابھیشیک شرما نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وکٹ حاصل کیے۔ اپنا پہلا میچ کھیل رہے یش ٹھاکر اور پرنس یادو نے دو دو وکٹ لیے۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ پر 219 رن بنائے تھے۔ اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے تین میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے ٹی ٹوینٹی کے نئے کپتان سریش ائیر کی کپتانی میں پہلی سیریز جیتی ہے۔ آج کینیڈا کے اونٹاریو میں بھارتی اسکواش کھلاڑی انہت سنگھ نے مصر کی بارب سامے کو 3-1 سے ہرانے کے بعد عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی مقام پر اب ان کا سامنا خطابی مقابلے میں مصر کی رقیہ سلیم سے ہوگا۔ اس میچ کے بھارتی وقت کے مطابق رات تقریباً 10:30 بجے شروع ہونے کا امکان ہے۔ انہت سنگھ تاریخ میں محض دوسری کھلاڑی ہیں جو جوشنا چنپا کے بعد اس سرکردہ خطابی مقابلے میں پہنچی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے۔ سی جے پی نے احتجاج ختم کر دیا ہے، کیونکہ نئی دلی میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے مطالبات کو حکومت نے منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولٹووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کا تین ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔